नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से देश व विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 133वां संस्करण। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में विजन 2047 समृद्ध और महान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कोई भी अदालत किसी महिला विशेषकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी राजनीति करने का लगाया आरोप। और ऊना जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में 13 अतिरिक्त गांव चयनित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 133वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DDU न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में विजन 2047 समृद्ध और महान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी शोध संस्थान के सहयोग से किया गया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए भारत की वर्ष 2047 तक समृद्ध व आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए समेकित नीतिगत ढांचे, नवाचार और संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत गतिशीलता समाधान विकसित करने में शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में भारत और विदेश के 100 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया और विजन 2047 से जुड़े विषयों, समावेशी आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, रोजगार सृजन और सतत विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी अदालत किसी महिला विशेष रूप से नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कल 15 वर्ष की लड़की को 7 महीने से अधिक के गर्भ को चिकित्सीय रूप से हटाने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्तता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विशेषकर प्रजनन के मामले अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा और निजता का अभिन्न हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल कांगड़ा जिले के बगलामुखी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पारित न होने के लिए महिलाएं कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कई दशकों के लिए सत्ता से बाहर रखने के लिए मातृशक्ति काम करेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर चुनाव के समय जनता को दी गई गारंटियों को पूरा ना करने का आरोप भी लगाया।
2023 में जब बिल आया था, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस बिल को तुरंत लागू करना चाहिए, पारित करने के लिए सहयोग भी दिया और कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जब सहयोग की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी होगी। लेकिन अभी जब लोकसभा का विशेष सत्र 16-17-18 अप्रैल को बुलाया गया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को विरोध किया। बिल का विरोध करने के बाद बिल पास नहीं हो पाया और इसके लिए पूरे देश की महिलाएं, जो आबादी का आधा हिस्सा है, कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, उन मुद्दों को लेकर के, जिसमें बेरोजगारों के नौजवानों का मुद्दा, जो गारंटी 5 लाख नौकरी की दी थी वो अपने आप में मुद्दा है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी वो अपने आप में एक मुद्दा है। इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से कोई ताकत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकती।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार जनगणना 2027 के लिए देश भर में टोल फ्री नंबर 1855 सक्रिय हो गया है। इस हेल्पलाइन से मकान सूचीकरण और आवास जनगणना संबंधी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। ये सूचना क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों का एकीकृत विकास करना है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक 225 से अधिक अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांव घोषित किया जा चुका है। इस योजना के तहत ऊना जिले में 23 गांवों के समग्र विकास के लिए चयन किया गया था, जिसमें लोगों की सहभागिता से अनेक विकास कार्य किए गए। योजना के दूसरे चरण में 13 अतिरिक्त गाँव चुने गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ऊना जिला में 23 गांवों को समग्र विकास हेतु चयन किया गया था, जिनमें लोगों की सहभागिता से अनेक विकास कार्य किए गए। योजना के दूसरे चरण में जिला के 13 अतिरिक्त गांव चुने गए हैं, जिनमें इन गांवों में विकास कार्यों हेतु 3,60,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। इनमें से अब तक 2,17,00,000 रुपए विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किए गए हैं। योजना के तहत सोलर लाइट, रास्ता निर्माण, वाटर कूलर स्थापित करने, स्मार्ट क्लासरूम और तालाब बनाने जैसे लघु कार्यों को भी चिन्हित किया गया है। इसके अलावा चयनित गांवों में पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों के अलावा बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध होगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
पालमपुर नगर निगम चुनाव प्रभारी व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने आगामी चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और सामूहिक विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पालमपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 26 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। धर्माड़ी ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना है जो न केवल संगठन के प्रति समर्पित हो, बल्कि क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सके। चंबा जिला मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के परिधि गृह परिसर में 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से आयोजित इस कैंप को लेकर जिला वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। पहले इस तरह की सुविधा पहले उपलब्ध न होने के कारण चंबा के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अन्य जिलों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस दौरान करीब 150 लोगों को पासपोर्ट संबंधी सुविधा प्रदान की गई।
अन्यथा हर 2 महीने में एक बार जो वैन है उसका सुनिश्चित हो जाए, ताकि जो जिला चंबा के लोगों को बाहर ट्रैवल करना पड़ता है सुविधा के लिए, उससे हम लोग जो है निजात पा सकें। 3 दिन के लिए ये कैंप लगा था, जिसके अंदर पर डे 50 एप्लीकेंट्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस पे हो पाता है। तो सभी जो स्लॉट्स हैं वो टाइमली बुक हो गए थे और लोगों ने उसका फायदा उठाया है।
प्रदेश के अनेक जिलों में आज से मौसम के करवट लेने की संभावना है, जिसके चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा की संभावना है। इसके अलावा कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और कुछ अन्य मैदानी इलाकों में अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य में 28 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिम केयर में गड़बड़ झाले की जांच के लिए विजिलेंस की एसआईटी गठित। हिमाचल दस्तक प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के निर्देश, आवेदन के समय अविवाहित बेटी को नियुक्ति तक अविवाहित माना जाएगा। पूरी वसूली के बाद ही मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए एनओसी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थानीय निधि लेखा समिति का फैसला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में 16 जून से शुरू होगा पहला चरण, 15 जुलाई तक चलेगा। पंजाब केसरी लिखता है, अब शिक्षा निदेशक लेंगे फैसला, स्कूल में सीबीएसई बोर्ड लागू होगा या एचपी बोर्ड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से देश व विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा, मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 133वां संस्करण। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में विजन 2047 समृद्ध और महान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी अदालत किसी महिला विशेषकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी राजनीति करने का लगाया आरोप और ऊना जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में 13 अतिरिक्त गांव चयनित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।